प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग छठा, लेक्चर नंबर 463। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ श्रुतात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्,
नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सर्वसाहूणम्। सुर असुर नर पति वंदने प्रविनष्ट गाति कर्मने प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने परिशेषति शंकर अनेश सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीर्य चरण संयुक्त ने ते सर्वने साते तथा प्रत्येकने वंदोरी मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौ सीधने नमस्करण करिये निते गणधर ने अध्यापको ने सर्वसाधु समूहने सुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यनी ये नाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्युक्ति टीका की रचना की है। इन पर गुरुदेव श्री कांजीव स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से छठे नंबर की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 पर हम आगे 7 नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं। 127 गाथा की टीका हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं, भगवान आत्मा। यहाँ बात अभी तक हमने द्रव्य का सामान्य स्वरूप देखा था, द्रव्य सामान्य। अब विशेष द्रव्य का अर्थ क्या होता है, द्रव्य में जो विशेषता है। छह जाति अपेक्षा जब छह कहते हैं तो छह जाति जुदी है तो छह के अपने अपने जुदे जुदे लक्षण होने चाहिए। तो यहाँ उसकी बात चलेगी। तो उनमें से जीव और अजीव ऐसे मुख्य दो भेद किए, जीव द्रव्य चेतन है और बाकी पांच अचेतन है। तो भगवान आत्मा चेतन द्रव्य है। छह द्रव्य तो अरे पांच पाइजिए, पांच आइए, यानी टोटल छह द्रव्य है उसमें से पांच द्रव्य तो अजीव है। ये छह के बदले वहां पांच लिखना। यह चेतन द्रव्य है तो क्या लक्षण से चेतन ख्याल में आता है, तो कहते हैं कि चेतना लक्षण गुण है, यह गुण दूसरे द्रव्य में नहीं है, इस चेतना से लक्षण में आता है। चेतना से लक्षण में आता है तो इस चेतना गुण से लक्ष्य में आता है कि उसके परिणमन से लक्ष्य में आता है। स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रूव कर रहे। ये चेतन द्रव्य है तो कैसे ख्याल में आता है, लक्ष्य में आता है ना, कैसे ख्याल में आता है, उसका क्या लक्षण है, तो चेतना गुण इसका लक्षण है। तो चेतना गुण आपको डायरेक्ट समझ में आता है कि उसके परिणाम आपके ख्याल में आता है, ये पूछ रहे हैं प्रश्न के द्वारा, हमें समझा रहे हैं। तो कहते चेतना लक्षण गुण है, यह गुण दूसरे द्रव्य में नहीं, इस चेतना से लक्ष्य में आता है। चेतना से लक्ष्य में आता है तो इस चेतना गुण से लक्ष्य में आता है कि उसके परिणाम से लक्ष्य में आता है, ऐसी बात है। क्या पूछना चाहते हैं, समझ में आता है? बेलोकर जी इसका वर्ण क्या है? येलो। अच्छा, तो वर्ण गुण दिखा कि नहीं आपको? हाँ, कि उसकी
पर्याय।
हाँ, तो गुण नहीं, गुण के द्वारा ख्याल में नहीं आता, उसके पर्याय के द्वारा ख्याल आता है, ये कह रहे हैं। ऐसे ही चेतना गुण कैसे, उसका चेतना का परिणमन क्या हो रहा है, जानन रूप, उसके द्वारा वो चेतना गुण है ख्याल में आ रहा है, उसके चेतना गुण के द्वारा वो द्रव्य है ख्याल में आ रहा है, ये कह रहे हैं। मिला आपको? हाँ, ऐसी बात है। क्या हो, चेतना तो त्रिकाली ध्रुव है, परंतु उसका परिणमन जो होता है उसमें लक्ष्य में आता है। सूक्ष्म बात प्रभु, ये तो एक एक श्लोक अलौकिक है। देखो किसी भी द्रव्य के जो है ना, हम द्रव्य का पुद्गल कर, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण है तो हमें क्या दिखाई देते, हमें क्या समझ में आती, उसकी पर्याय, हम पर्याय को जानते हैं, यानी इसलिए हमको गुणों की पर्याय भी मालूम होनी चाहिए। पहले हमने सिद्धांत प्रवेशिका में कैसे देखा था, पुद्गल द्रव्य है उसका स्पर्श गुण है तो उसकी कितनी पर्याय हो सकती है, हाँ वो हल्का भारी रूखा चिकना वगैरह, तो उसके द्वारा हमको स्पर्श गुण है ये ख्याल में आता है, क्योंकि वो व्यक्त उसके वो इस रूप से व्यक्त है। वर्ण गुण कैसे, काला पीला नीला सफेद, उस रूप से व्यक्त है। इस तरह से ये चेतना गुण है तो जानन रूप जो परिणमन हो रहा है उसके द्वारा वो चेतना गुण व्यक्त हो रहा है, यही यहाँ कह रहे हैं। तो कहते सूक्ष्म बात प्रभु, ये तो एक एक श्लोक अलौकिक है, प्रवचन सार है, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। आहा, कहते हैं कि छह द्रव्य में से जीव द्रव्य की विशेषता, विशेषता का अर्थ कौन से लक्षणों के द्वारा वो अन्य द्रव्यों से वो भिन्न पहचानने में आता है, यानी भिन्नता, उसके लक्षण से भिन्नता जानने में आती है। तो यह लक्षण क्या, ये तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो पीसी हुई शक्कर भी सफेद दिख रहे, वो नमक भी सफेद है, तो कैसे पहचानते हैं? स्वाद, हाँ, एक खारा है एक मीठा है, इस तरह से हम उसके लक्षण के द्वारा पहचान सकते हैं। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि ये लक्षण क्या है उसका, तो प्रभु चैतन्य का लक्षण क्या, तो चेतना लक्षण है, तो वह तो ध्रुव है। चेतना लक्षण तो बात सही है, जैसे हम स्पर्श रस गंध वर्ण कहेंगे वो, परंतु वो तो ध्रुव है, तो उसकी पर्याय के द्वारा, तो चेतना से लक्ष्य में आता है ऐसा तो वहां है नहीं। ध्रुव से ध्रुव लक्ष्य में आता है, क्या कहा, ध्रुव को लक्ष्य करना है तो गुण भी ध्रुव है, तो क्या उसके द्वारा वो ध्रुव ख्याल में आएगा, तो कहते नहीं। चेतना चेतन का लक्षण, चेतन का चेतना लक्षण, चेतन ये द्रव्य हुआ और चेतना उसका गुण हुआ। जीव द्रव्य का चेतना स्वभाव, स्वभाव कहो लक्षण, उसके परिणमन में ख्याल में आता है, परिणमन में कहो, परिणमन से कहो, वो ख्याल में आता है। चैतन्य का परिणमन हुआ, चेतना का परिणमन उपयोग हुआ, चेतना का परिणमन कहो हम उपयोग कहते हैं, उसको व्यापार कहेंगे, यानी वो परिणमन, वह उपयोग लक्षण है और चेतना लक्ष्य है, यानी जिसका लक्षण बांधा जाता है उसको कहेंगे लक्ष्य, और चेतना लक्षण और द्रव्य लक्ष्य है। देखो क्या कहते हैं, पहले पर्याय को लक्षण कहा, गुण को लक्ष्य कहा, गुण को लक्षण कहा तो द्रव्य को लक्ष्य कहा, यही कह रहे। फिर से पढ़ते हैं, चेतना का परिणमन है वह उपयोग है, तो उपयोग वो लक्षण है, परिणमन वो लक्षण है और चेतना यानी जो गुण है वो लक्ष्य है। अब आगे बढ़कर कहते हैं, चेतना जो गुण है वो लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। कौन सा द्रव्य, ये चेतन द्रव्य, जीव द्रव्य, परंतु यह चेतना लक्षण जीव द्रव्य का है, उसका ख्याल किस में आता है? तो कहते उपयोग, चेतना का जो उपयोग यानी परिणमन है उसमें यह चेतना है ऐसा लक्ष्य में आता है, ऐसी बातें हैं। और उसे तो नक्की हो जाता है कि मैं भवी हो भवी तो हूँ लेकिन सम्यक दृष्टि हूँ, उसे भगवान को पूछने जाना नहीं पड़े। समझ में आता है? यह प्रश्न संवत 1990 की साल में राजकोट में हुआ था, 90 हिंदी में 90 कहेंगे, 1990 की साल में राजकोट में हुआ था कि भवी है या अभवी। अरे भवी अभवी का प्रश्न ही नहीं है, मैं एकांत भवी तो हूँ ही, मोक्ष के लायक ही मैं हूँ, अभवी भवी का प्रश्न यहाँ है नहीं। और मार्गणा में तो ऐसा कहा है न कि भवी अभवी की शोध मत कर, क्योंकि पर्याय का भेद है ना, भवी पर्याय में है और एक अभवी पर्याय में है। अभवी का त्रिकाल गुण है नहीं और भव्य का त्रिकाली गुण नहीं है, वो कोई गुण नहीं है, वो पर्याय में जो योग्यता है उसकी अपेक्षा वो भव्यत्व अभव्यत्व भी कहा है। जीव को भवी या अभवी कहते हैं पर्याय की अपेक्षा कहेंगे कि जो कभी सम्यक तो प्राप्त करके सिद्ध नहीं बनने वाला है, हाँ तो उसको अभवी कहेंगे। और जिसमें योग्यता है भले अभी सम्यक तो नहीं भी प्रकट हुआ है उसको कहेंगे भवी। तो पहले में पहले वहीं से रोना चालू करता है, अरे मैं अभवी होगा तो, अरे अभवी हो परंतु तो त्रिकाल स्वभाव तो वही है ना। हाँ ऐसा सब है, आपके हीरे मानिक से अलग बात है। अभी कोई झवेरी सामने बैठे हैं, हाँ उनको कहते हैं चैतन्य हीरे को कैसे परखना, चेतना स्वभाव से उसे परखना। चेतना स्वभाव कहने से गुण हो गया, भगवान आत्मा चेतना से है ऐसा जान, परंतु वह चेतना से है ऐसा ध्रुव में तो जानने में आता नहीं। क्या कहा, वो चेतना है ये ध्रुव जानेगा कि पर्याय जानेगी, ये कह रहे पंच पर्याय जानेगी। दो शब्द है ना, चेतनो व ओगमो, यानी चेतना और उपयोग में, ऐसी भाषा है, मूल पाठ है। दवम जीवम अजीवम जीवो पुनः छेदनो व ओगमो, यानी छेदन और उगमो यानी उपयोगमयी, ये प्राकृत है ना। चेतना का जो उपयोग, उपयोग यानी परिणमन, परिणमन पर्याय है, उसमें ख्याल में आता है, क्योंकि जानने का कार्य कहाँ हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। तो पर्याय में ये जानने में आया कि ये चेतना गुण है और ये चेतन द्रव्य है। चेतना गुण है, चेतना गुण का आधार द्रव्य है और चेतन का यह चेतना लक्षण है, ऐसा होने पर भी ध्रुव से वह अनुभव में नहीं आता, क्योंकि कार्य कहाँ हो रहा है, जानन रूपे पर्याय में हो रहा है, वह परिणमन में ख्याल में आ गया। अर्थात उपयोग रूपी परिणमन में चेतना चेतन का लक्षण है ऐसा उपयोग में ख्याल में आया। तो उपयोग में ख्याल में आया यानी वो सम्यक दर्शन हुआ, ऊपर बताया था ना कि नक्की तो हो जाता है मैं भवी तो हुई लेकिन मैं सम्यक दृष्टि हुई, किस में जाना, वो चेतना लक्षण को नक्की कर दिया तो उपयोग में जान लिया उसने, तो उसके लिए भगवान के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ ये कह रहे भगवान आत्मा चेतन को दूसरे द्रव्य से भिन्न जानने का लक्षण क्या, भगवान आत्मा को दूसरे द्रव्य से, जड़ से, पांच अजीव से, पुद्गल से, कर्म से भिन्न जानने का लक्षण क्या। कर्म भी पुद्गल है ना, पुद्गल का लक्षण पुद्गल में है, भगवान तो उसके लक्षण से भिन्न है, उसके भी लक्षण जानने वाला जीव है और अपना भी लक्षण जीव ही सबके लक्षण जान रहा है। चेतना चेतन का लक्षण है परंतु यह लक्षण ध्रुव है, परंतु ध्रुव जानने में कब आया कि यह चेतना चेतन का लक्षण है, कहते जानन रूप परिणमन हुआ तब वो जानने में आया। यहाँ तो सीधी बात है, हा हा, जानन रूप ज्ञान चेतना का परिणमन हुआ तब ख्याल में आया कि यह चेतना लक्षण है। ज्ञान चेतना का बताए ना, ज्ञान चेतना यहाँ स्वभाव को कहा था अभी पहली गाथा में, तो जो स्वर पर को युगपद भेद करके जानता है वो स्वभाव है जीव का, तो उसका परिणमन हुआ यानी उपयोग हुआ तब ख्याल में आया यह चेतना लक्षण है और लक्ष्य द्रव्य है वो उपयोग में ख्याल में आ गया। वहां तो निर्णय भी हो गया कि मैं तो भवी हूं, क्योंकि वो लक्षण ख्याल में आया, उसने अपने को अनुभव करके पहचाना, तो क्या नक्की हुआ, निर्णय हो गया कि मैं तो भवी हूं और चेतना को जानने से मैं तो सम की दृष्टि हूं, यानी मैं सम्य दृष्टि हूं, क्योंकि सम्य दर्शन भी हुआ है और वो तो सम्य दर्शन हुआ है तो भव्यत्व को तो भव्यत्व की अभिव्यक्ति हो गई, नक्की हो गया ना। हाँ आहा हा, समझ में आया, भगवान को पूछना नहीं पड़े कि भगवान जाने। मेरा प्रश्न है उमा बेन, अभवी के गुणस्थान कौन कौन से हो गए, पहला और दूसरा, गुणस्थान में
गुणस्थान कौन सा है,
इनसे कोई अभी बोलो। हाँ हाँ सातवें तक, अच्छा बहुत है, 14 तक सुनो सुनो, दूसरे गुणस्थान में कौन आता है बोलो, ऑप्शन सम्यक दृष्टि गिर कर, यानी उसने सम्यक तो प्राप्त किया तो क्या हुआ, भव्य हुआ, और सम्यक मिथ्यात्व में कौन आएगा, जिसके पास सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है वो कब आती है, जब पहली बार समय दर्शन प्राप्त करता है तब, वो पहले ही गुण, वो कभी समय तो प्राप्त ही नहीं करेगा, इसलिए अभवी का गुणस्थान एक ही। अब समय तो भवी के बोलो, कहाँ से कहाँ तक, भवी हाँ भव्य के दूसरे से
दूसरा हो गया,
तीसरा चौथा दूसरे से और पहला अरे भव्य हमें आपको कैसा भी कंफ्यूज करे, आप पक्के हो तो
नहीं नहीं क्या है कि गुणस्थान का अभ्यास नहीं है,
बात सही है,
इसलिए थोड़ी सी घोटाले दे,
कोई सातवां से हम दूसरों को समझाना चाहते हैं।
नहीं 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 वो कोई सातवां गुणस्थान बोलता है, अभी क्या करें अभ्यास होते हुए भी ऐसा बोले तो क्या करें।
अभवी का अर्थ क्या है, कभी सम्यक तो भी प्राप्त है, क्योंकि जिसने सम्यक तो प्राप्त किया है भले वो गिर भी जाए मिथ्यात्व में, वो तो अर्धपुद्गल परावर्तन में नक्की है उसका मोक्ष, अभी अधिक नहीं भटकेगा, बीच में कहीं सभी मिथ्यात्व में कौन से भी गति में सभी 14 जीव समाज में कहीं पर भी भटेगा भटकेगा, पर वो भव्य है वो नक्की हो गया ना, एक बार तो सम्यक तो प्राप्त है ना, वो भव्य का वो तो नक्की हो गया, अपने से ही नक्की हो गया, भगवान तो जानते ही थे परंतु हमने अपने को भी जान लिया कि भव्य है, समझ में आती है बात, तो भव्य कहाँ है, पहले गुणस्थान में तो कितने अनंत अनंत भव्य पड़े ना, क्योंकि हर
अरे बाकी छोड़ो हम तुम है ना
अरे होने दो ना, अभवी पहले दूसरे में कहा आपने, पहले में ही अभव्य भी, अभव्य तो अकेले पहले में है, अभव्य जीव मात्र पहले गुण स्थान में है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि ही है, कभी सम्यक तो प्राप्त नहीं करेंगे, और भव्य जीव अरे पहले गुणस्थान में अभव्यों से तो भव्य ही अनंत अनंत गुणे है, भव्य ही ज्यादा हो गए, क्योंकि देखो भव्य एक बार बीच में कहा 14 तक कितने हो गए, दूसरे गुणस्थान से 14 तक की संख्या कितनी होगी, असंख्यात होगी, और वो फिर मोक्ष चले जाएंगे, तब उनको भव्य नहीं कहेंगे, होने योग्य कब तक वो हो गए, हो चुके 14 तक, समझ में ही बात है नहीं उसको भव्य में कहेंगे, पर हो चुके कौन, सिद्ध सिद्धों में वो पारिणामिक उनका स्वभाव था भव्यत्व, उसके बात अलग है। पहले था भव्यत्व तभी तो चुके, परंतु वो भव्य है का नहीं है तो कहते हैं भव्य नहीं, वो चुके, वो सिद्ध है। क्योंकि मूल शब्द क्या है, भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक, सिद्ध होने योग्य नहीं होने योग्य। परंतु जो सम्यक्त्व ही नहीं प्राप्त करेगा, जो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा वो निश्चित कुछ अल्पकाल में मोक्ष जाएगा ही जाएगा, ये नक्की है। अभव्यों की संख्या निश्चित है, कितनी है, कितनी है लक्ष्मी, कौन सा अनंत, जगन्य युक्त अनंत है। और हाँ उनकी संख्या फिक्स है, और बाकी अनंत अनंत इतनी जीव राशि है वो क्या है, बाकी तो सारे भव्य ही है ना, और उसमें से ही वो तो सम्यक तो प्राप्त करेंगे। असंख्यात जीव मिथ्यात्व में से एक समय में असंख्यात जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, वो कहाँ, वो तो भव्य है तभी करेंगे ना। आगे बढ़े अभी, यहाँ तो भव्य अभिव की शोध मत कर ऐसा कहा उन्होंने। ये हम नीचे तक आए थे, पेज नंबर 8 एकदम लास्ट पैराग्राफ यहाँ से पढ़ना है। भगवान नहीं, हम 9 पर आए, सॉरी सॉरी 9 पर आ गए थे, 9 पर आ गए थे। हाँ भगवान को पूछना नहीं पड़े, यहाँ तक आए थे ना। हाँ नया पैराग्राफ को लेना है, 9 पेज पर नया पैराग्राफ। अरे अरे ऐसी बड़ी बड़ी बातें लिखी और अंत में यह तात्पर्य निकाला, आत्मा हम और तुम ऐसा लिखा है, हम और तुम भव्य अभव्य है, काल लब्धि परिपक्व हुई नहीं हुई वह सर्वज्ञ जाने, ऐसे कोई कहता था। अरे रे प्रभु क्या करता है। गुरुदेव हमेशा कहते थे सर्वज्ञ जाने, सर्वज्ञ ज्ञानी हम भव्य के अभवी, कहते तू सर्वज्ञ को मानता है, जिसने सर्वज्ञ का निर्णय किया है वो तो सम्यक दृष्टि है, और तू सर्वज्ञ का नाम लेते है और हम भव्य के अभव्य सर्वज्ञ जाने ऐसा कहते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रोवर्सी। ये बता फिर से देखो, वो बताया था ना उन्होंने राजकोट में कुछ प्रश्न आया था भव्य के अभव्य वगैरह वगैरह, वही बात यहाँ रिपीट करते हैं फिर से कि बड़ी बड़ी बातें लिखी और अंत में यह तात्पर्य निकाला, आत्मा हम और तुम ऐसा लिखा, हम और तुम भव्य अभव्य है, काल लब्धि परिपक्व हुई नहीं हुई वह सर्वज्ञ जाने, यानी हम भव्य है कि अभव्य है, काल लब्धि परिपक्व हुई कि नहीं हुई ये सर्वज्ञ जाने, ऐसा वो कह रहे थे। प्रभु क्या करता है, यानी ऐसे कहने वालों को कहते हैं तो क्या कर रहा है भाई, अभी तो अभवी हूँ या भवी इस निर्णय का ज्ञान का कहाँ ठिकाना है, बड़ी भूल है भाई। आह क्या हो, अरे पुण्य को लेकर 10,000 आदमी इकट्ठे हो, विद्यालय स्थापने वाले है, जयपुर में महाविद्यालय स्थापेंगे, महाविद्यालय स्थापित करके उनकी श्रद्धा वाले पंडितों को भेजेंगे, आज आया है स्पष्ट लिखा है हम तुम भव्य है या अभव्य है और हमारी तुम्हारी काल लब्धि परिपक्व हुई या नहीं हुई ये सर्वज्ञ जाने, और यानी वो स्वयं घोषित कर रहे हैं ना मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, सर्वज्ञ को भी नहीं जान रहे अभी। हाँ मुमुक्षु के देश सम्यक दृष्टि हो उन्हें मालूम पड़े, गुरुदेव श्री पूज्य भाई श्री लिखा है। लेकिन अंदर में ज्ञान का आनंद आया और ज्ञान और आनंद पर स्वरूप परिपूर्ण है ऐसा नमूना से सारा द्रव्य परिपूर्ण है ऐसा अनुभव हुआ, यानी वो आनंद का नमूना आया, नमूने से पूरा द्रव्य का ख्याल आया वो परिपूर्ण है। भवी तो हुआ परंतु मैं संकिति हूँ और अल्पकाल में मेरी केवल ज्ञान पाने की तैयारी है, समझ में आया, ऐसी बातें है बापू। ये भाई श्री क्यों कहा वहाँ, तो गुरुदेव श्री
गलत से है। हाँ गलत है,
उनके पूजा लिखा ना गुरुदेव श्री भाई के बदले गुरुदेव श्री के। ऐसी बातें है बापू, बहुत कठिन काम, वर्तमान में तो ऐसी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि प्रवचन में ऐसी बातें बताते हैं तो लोगों का भी ऐसा, क्योंकि अभ्यास नहीं होता तो ऐसी बातें गड़बड़ चलती हैं। ये बीच में महाविद्यालय की क्या बातें लिखी उन्होंने?
जयपुर में खोलने वाले थे उस समय,
फिर आगे लिखते स्पष्ट लिखा हम तुम भव्य अभव्य, ये महाविद्यालय चले महाविद्यालय लिखना, दो बार लिखा है ना, सेकंड टाइम मह लिखा है। अभी हम पढ़ते गुरुदेव का एक पैराग्राफ हो गया नीचे, लास्ट नीचे से दूसरा, भगवान चैतन्य का नाथ अंदर विराजता है, उसका जो ज्ञान होता है वह ज्ञान चेतना है, उस ज्ञान चेतना के साथ अशुद्ध कर्म और कर्म फल चेतना भी है, परिणमन है ना यहाँ पर, समझ में आया? परंतु इस ज्ञान चेतना में ज्ञान द्वारा चेतना और द्रव्य जानने में आया, क्या कहा, ज्ञान द्वारा नहीं वो परिणति द्वारा, पर्याय के द्वारा, चेतना ने गुण और द्रव्य जानने में आया, तो इस ज्ञान उपयोग में अशुद्धपना भी चेतना में है, उसका भी ज्ञान चेतना में ख्याल में आया, क्या कहते हैं, ज्ञान ने वो अशुद्धता को भी जान लिया, ये कह रहे पर्याय को जाना कि नहीं, अभी पर्याय में राग है विद्यमान, उसको भी जान लिया ये कह रहे, और जितना अभी दुख है उसको भी जानेगा क्या नहीं जानेगा, वो भी जानेगा, क्योंकि अशुद्ध चेतना कोई जड़ में होती नहीं, शुभाशुभ परिणाम मलिन है और उसका फल दुख कोई पांच द्रव्य में तो होता नहीं, मेरी पर्याय में है। पहले ये नक्की करना, फिर राग से भिन्नता करना, मेरा है ही कहे ना, वो तो दृष्टि की अपेक्षा वो बात अलग है, पहले ज्ञान में वो मेरे ही द्रव्य में हो रहा है, मेरे ही वो परिणति, वो मेरा ही अपराध है, पहले में पहले स्वीकार होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, शुभाशुभ परिणाम मलिन है और उसका फल दुख कोई पांच द्रव्य में तो होता नहीं, मेरी पर्याय में है। समझ में आया? ओहो हो, मेरी पर्याय का जो ज्ञान उपयोग रूप परिणमन हुआ, उस परिणमन से चेतना में चेतन का भान हुआ, उसके साथ अशुद्ध चेतना भी है, ख्याल में आती है, क्योंकि ज्ञान उपयोग ने जैसा है वैसा जान लिया, तो वहां अशुद्ध चेतना भी है, उसको भी जान लिया, इसलिए अशुद्ध चेतना भी है, 10 नंबर के पृष्ठ पर आना। परंतु इस अशुद्ध चेतना का शुद्ध उपयोग की चेतना में ज्ञान होता है कि अभी परिणमन में अशुद्धपना है, यानी अशुद्ध चेतना को ज्ञान की पर्याय ने जान लिया है, ऐसी व्याख्या कभी उसके पिता ने भी सुनी न हो। पिता का आत्मा भिन्न है और ये आत्मा भिन्न है। श्रेणिक राजा मरकर नरक में गए और अभय कुमार मोक्ष में गए, लड़का मोक्ष में गया और पिता नरक में गए, उसका भी आता है ना, रावण का, रावण तो नरक गए और वो मेघनाथ तो मोक्ष गए। श्रेणिक राजा तीर्थंकर होने वाले हैं परंतु इस वक्त नरक में गए हैं, शायिक सम्मेदर्शन, पूर्व में भव बंधन हो गया, भव बंधन आयु का बंध हो गया, नारक का आयुष्य बंधन हो जाए उसमें कभी कमी होती है, सॉरी उसमें कमी यानी उसमें घटना होता है, उसको क्या कहते हैं मालूम है, आयु घटी ना उसको क्या कहेंगे, घातायुष्क, 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 हाँ, यानी श्रेणिक के भव में ही उसने पहले 33 सागर की नरकायु बांधी थी, तो बाद में परिणाम सुधर गए, समय दृष्टि हुई थी, संग प्रवृत्ति बांधी, तो ये शुभ परिणाम के कारण वो जो स्थिति घटी उसकी, उसको कहते घातायुष्क, जैसे ये प्रशस्त परिणामों से उसका नरकायु अप्रशस्त से उसका घात हुआ, इसे देवों में भी हो सकता है, देवों की कभी कभी तो 33 सागर की आयु बांधी हो, कोई वो मुनिराज ही बांधते हैं 33 सागर की। हाँ, इसके ऊपर कल शोभाबेन का प्रश्न था नकुल सहदेव के बारे में, अभी वही बात है ना, 33 सागर की आयु बांध कर वो गए थे, तो वो आयु कब बांधी होगी, जब उपशम श्रेणी चढ़े तब बांधी होगी, कब बांधी होगी, श्रेणी में बांधते हैं, क्योंकि आयु का बंध छठे में ही होगा, चालू तो छठे में ही होता है, सातवें तक कंटिन्यू हो सकता है, सातवें में बिगिनिंग भी नहीं होती। देवायु के देवायु जो है, क्योंकि वहां तो देवायु बनती है, मुनिराज को तो देवायु के बंद है, तो आयु का बंद छठे में शुरुआत होता है और सातवें तक पूर्ण हो जाता है। सातवें में बिगिनिंग नहीं होती आयु बंद की, और ऊपर आठ नौ दस ग्यारह वहां तो कोई आयु का बंद नहीं होता। उपशम श्रेणी वाले का भी श्रेणी में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, सातवें के ऊपर होता ही नहीं। इवन सातवां जो सातिश है अप्रमत्त है, वहां पर भी आयु का बंध नहीं होता। रेगुलर जो छठे सातवें व गुणस्थान वाले हैं, उनका छठे में शुरुआत होकर सातवें में पूर्णता हो सकती है, या कोई छठे में बांध दे पूरा कर दे छठे में, ये भी हो सकता है। उनका प्रश्न था ना कि वो तो, क्योंकि ऐसा आता है ना कि उनमें वो इन साधर्मियों को ये सहन होगा कि नहीं होगा, ऐसा ये तो बहुत स्थूल विकल्प है।
अब जिनको तो ऐसे विकल्प तो छठे गुणस्थान में ही होंगे,
ऐसे हो गए, और वो तो प्रथमान योग का सामान्य कथन है, क्योंकि 33 सागर की आयु बांधने वाले के ऐसे थोड़े उपयोग परिणाम हो गए उस समय भी। उस समय कोई आत्म संबंधी परिणाम चल रहे होंगे, कोई अन्य विकल्प चल रहा होगा, विकल्प अवस्था में तो बंद हुआ है ना, पर ये तो सामान्य कथन पद्धति है कि वो ऐसा विकल्प के कारण उनको यानी देवायु बांधी है, इसलिए वो क्षपक श्रेणी तो नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि आयु बंदी है तो अभी उसको आयु में जाना ही पड़ेगा। अभी एक भव तो बाकी है ही है, ये उसका कारण है। अभी फिर भी पुरुषार्थी तो थे, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे और उपसर्ग अवस्था में वहीं पर मरकर वो सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। 33 सागर के, हाँ किसी के हो सकती है ना, जैसे द्वीपायन मुनि की बात आती है, 33 सागर की आयु बांधी थी, और वो बांधने वाले तो छठे सातवें गुणस्थान में, वो तो भावलिंगी संत थे, पर बाद में हम मालूम है ना उनके तो अशुभ तेजस निकाला निकला वगैरह वगैरह, तो क्रोधित हो गए, मिथ्यात्व में चले गए, और परिणाम ऐसे बिगड़े कि 33 सागर की आयु 10,000 वर्ष की हो गई और अग्निकुमार में चले गए भवनवासी में। ये हो सकता है, ये महाबंध में तो ऐसी बहुत बात है कि किसी ने बड़ी आयु बांधी फिर दोबारा कभी वो बांध सकते वगैरह, ऐसे ऐसे उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंस ऐसे निकलते हैं। हाँ, यहाँ श्रेणी की बात हो रही थी, देखो पूर्व तीसरी लाइन है पहले पैराग्राफ की, पूर्व में भव बंधन हो गया यानी नरकायु बांधी, नरक का आयुष्य बंधन हो जाए उसमें कमी होती है लेकिन अभाव नहीं होता, कमी हुए नहीं घातायुष्य हो गया उसका। नरक गति के बंध में बड़ी स्थिति का बंध पड़ा था, मुनि की अशातना की थी, बड़ी स्थिति का यानी कितना बड़ा बंध पड़ा था, नहीं नहीं वो तो नरकायु का 33 सागर का था, नरक गति का बड़ी स्थिति का कितना होगा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, उससे कोई लेना देना वहां तो कोई इतना वो स्थिति तो भोग, परंतु बस संकलेश में बांधी थी, क्योंकि 33 सागर का यानी कृष्ण रेशा वाला बंध हुआ था, अति संकलेश में बंध हुआ था, वो नरक गति भी वहां उत्कृष्ट बंधी होगी 20 कोड़ा कोड़ी सागर की, ये कहना है।
इनको नरक गति
नरक गति है
आयु ही कहना है,
आयु नहीं तो यहाँ आयु कहना पड़े।
स्वामी जी बाय चांस बोले होंगे नरक गति, लेकिन उनको नरक आयु
पर तो आयुष्य बंधन हो जाए उसमें कमी होती है अभाव नहीं होता, ये बताए थे ना, तो नरक आयु ही कहना है उनको, क्योंकि गति से कोई मतलब नहीं होता कितने भी बंधे थे। हाँ ये नरक आयु के बंध में बड़ी स्थिति का बंध पड़ा था, ये समझ में आई बात, क्योंकि गति का भले जब उसने बंद किया होगा और समय दर्शन प्राप्त करते ही वो तो कट डाउन होकर अंत कोड़ा कोड़ी हुई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और गति भी कितने भी क्यों ना हो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, उसमें तो कोई आयु जितनी बंदी उतनी जब होने पड़ते हैं। तो नरक आयु के बंद में बड़ी स्थिति का बंद पड़ा था, 33 सागर का था, मुनि की अशातना की थी तब बड़ी स्थिति थी, मुनि थे आत्मा के आनंद में रमते थे, श्रेणिक राजा बौद्धमती थे, एक मरा हुआ सर्प था, उसे उठाकर मुनिराज के गले में डाल दिया। लाखों चींटियां थी लेकिन मुनि तो ध्यान आनंद में है। घर पर रानी समकीती थी, चेलना रानी। आहाहा, उसे कहा कि तेरे गुरु के गले में मैं सर्प डालकर आया हूँ, उन्होंने निकाल दिया होगा। तो रानी कहती है, प्रभु ऐसा नहीं होता, ऐसे हमारे गुरु नहीं होते। हमारे गुरु तो उस उपसर्ग के समय ध्यान में होते हैं, आनंद में होते हैं। तो राजा कहते हैं, अरे निकाल नहीं देते, ऐसी करोड़ों चींटियां हैं। रानी कहते, प्रभु चलिए देखने, अन्नदाता देखिए। वहां जाते और देखते तो मुनि तो अति आनंद में मस्त है, सर्प तो निकाल दिया। रानी कहते, राजा देखिए, मुनि ध्यान और आनंद में है। वे मुनि जब शुद्ध उपयोग से बाहर आते हैं, आहाहा, कहते हैं, राजन क्या है? आहा, श्वेतांबर में तो आता है कि राजन तुम अनाथ हो, तेरे आत्मा का कोई शरण नहीं। राजा कहते हैं, प्रभु मैं अनाथ हूँ या आप अनाथ है, अकेले हो, कोई साधन नहीं। मुनिराज कहते हैं, मैं अनाथ हूँ या तुम अनाथ हो, तेरे आत्मा को शरण नहीं, तुम अनाथ हो, हम तो सनाथ है। राजा को बोध दिया और समकित प्राप्त किया, सम्यक प्राप्त किया और भगवान के पास समोशरण में गए। वहां क्षायिक समकित हुआ, पहले उपशम समय दर्शन था, फिर तुरंत क्षयोपशम हुआ। धौल में ऐसा पाठ है, तुरंत ही मिथ्या तो हो जाता है, और एक जगह ऐसा पाठ है, उपशम होकर तुरंत क्षयोपशम होता है। ऐसी दो बातें धवल में है। देखो क्या कहना चाहते हैं,
आज ही प्रश्न हुआ,
आज ही प्रश्न आया था जयपुर से एक बहन का कि यहाँ क्या लिखा, उपशम सम्यक्तो के बाद प्रथम उपशम जिसको हम कहेंगे, जीव के चार रस्से होते हैं, सामान्य से चार
वेज
उपशम सम्यक्तो अंतर्मूल तक होता है। उसके बाद या तो कोई मिथ्यात्व में चला जाएगा, या बीच में ही अनंतानुबंधिक का उदय हो तो दूसरे गुणस्थान में चला जाएगा। उपशम समय तो पूरा होने पर, सम्यक मिथ्यात्व के उदय होने पर, यानी जीव के परिणाम होते हैं, हम कर्मों की भाषा में बोल रहे, तीसरे गुणस्थान में आएगा। और सम्यक प्रकृति का उदय चलता रहे तो उसका गुणस्थान वही चौथा का चौथा चल रहे। परंतु यहाँ कहते कि कोई तो जो नियम से पहले में जाता है, वो कौन सा? पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि, जब सबसे पहली बार औषमिक ही करेगा, वो भी प्रथम औषम उसका भी नाम है। और बाद में अनेक बार असंख्या तो बार भी प्राप्त करता है बहुत लंबे काल के बाद, तो भी उसको प्रथम उपशम ही कहते हैं। इसको प्रथम सम्यक तो जो है सबसे पहली बार होता है, वो नियम से मिथ्यात्व में जाता है, क्योंकि अनादि का मिथ्या दृष्टि है, अब पहली बार किया है तो मिथ्यात्व में जाएगा। अंतर्मूर्त में इमेज वो स्वयं प्राप्त करेगा, कर सकता है, करेगा या नहीं कर सकता है, बिना वो बाकी सब बिना करण परिणाम के भी इतने छोटे काल में वो ताबड़तोप क्षोपशम समय को प्राप्त करता है। इसलिए कहते दोनों ही बातें आती, दो बातें आती, क्यों कहा? एक तो सामान्य कथन के प्रथमोपशम सम्यक्त के चार रास्ते हैं उसके बाद, और दूसरा क्या है, सबसे पहली बार जो करता है वो नियम से मिथ्यात्व में आता है। वो लाठी संहिता में भी आया है और उसमें अपने जयधोला में भी आया है, ये नियम है। परंतु उसको गौण करके सामान्य से कथन क्या करते, उसके चार रास्ते, यानी उसमें कोई विरोध तो है नहीं है। और हमको क्या मालूम श्रेणिक राजा ने पहली बार किया था, वो अनादि से कोई करके छूट भी गया होगा ना, ये तो पॉसिबल है कि नहीं? अर्धपुद्गल परावर्तन काल में कुछ भी हो सकता है, पहले किया भी होगा, हम आपने भी कोई करके आया होगा कि नहीं पहले से, साधी मिथ्या दृष्टि हो सकता, क्योंकि जो है ना साधी मिथ्या दृष्टियों में से नया कोई वो तो पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा है, क्या नहीं समझे? जिसने एक बार सम्यक तो प्राप्त करके, ऐसे भी अनंत जीव है जिनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा है, अभी उसमें से अनंत ने निगोदादि में ही ज्यादा है, अब उसमें से कोई असंख्या जीव जन्मेंगे, संगी पंचिंद्री हो गए, तो उनमें से ही ज्यादा जीव सम्यक तो प्राप्त करेंगे कि नहीं, ये कहेंगे मैं। जिसने नहीं किया था वो नहीं करता, ऐसा नहीं है, अनादि मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, परंतु साधे भी हो सकते हैं, उसमें से करेंगे।
यानी जो अनादि से पहली बार सम्यक तो प्राप्त करता है उपशम सम्यक तो,
हाँ,
वो नियम से
मिथ्यात्व में जाता है।
और उसके बाद असंख्यात बार भी उपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो उसका नाम भी प्रथम उपशम सम्यक तो ही है, क्योंकि द्वितीय उपशम सम्यक तो श्रेणी में चढ़ेगा।
हाँ, वो छठे सातवें गुण स्थान में श्रेणी के सम्मुख वाला उपशम श्रेणी चढ़ने के समय में होता है। दूसरी बात ये जो है ना प्रथम उपशम के बारे में, असंख्यात बार करता है कि एक बार प्रथम उपशम हुआ तो प्रथम उपशम के काल में क्या हुआ, पहले तो अनादि का मिथ्या दृष्टि था, एक मिथ्या तो उसके सत्ता में था जो बांधा हुआ था, मिथ्या तो प्रकृति का ही बंध होता है। जब पहली बार सम्यक दर्शन हुआ उसको तो मिथ्यात्व का अनुभव घटकर और दो प्रकृतियां उसी में से तैयार हुए, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। फिर से अनादि मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का ही बंध होता है। अन्य जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति नाम की जो दर्शन होने के जो भेद है वो बंधने वाली प्रकृतियां नहीं है, तो वो कैसे कहां से आती है, जब पहली बार वो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणा घटता है, उसके कुछ परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप होते हैं और उसे के कुछ परमाणु सम्यक रूप प्रकृति रूप से होते हैं, यानी अभी सत्ता में तीन प्रकृति आ गई। अब ऐसा जीव मिथ्यात्व में जाता है तो भी उनकी तीन प्रकृतियां वहां बनी रहती है। अब तीन प्रकृतियां तो बनी है, अभी नया बंध किसका होगा, मिथ्यात्व का, और बाकी दो प्रकृतियां क्या होती वो तो क्या रहता है, वो तो उल्टा संक्रमण चालू होता है, चालू ही होता है, तो मिथ्यात्व रूप से परिणमित होती रहती है।
उल्टा यानी जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व रूप होते हैं,
उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, उद्वेलना, उद्वेलना कहते हैं। देखो देखो उल्टा पहले क्या हुआ था, मिथ्यात्व में से दो तैयार हुई थी, अभी रिवर्स हो जाता है। देखो पहले अनादि से तो मिथ्यात्व ही था सत्ता में उसके, जब सम्यक दर्शन हुआ तो उसी के तीन भेद हो गए, यानी उसकी सत्ता में अभी तीन प्रकृति आ गई, एक मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है। जब मिथ्यात्व में आया ना, मिथ्यात्व में आते ही उस समय कई पोजीशन थी उसी समय, तो मिथ्यात्व एक समय इसका उदय था और दूसरे निषेक से लेकर ये सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में पड़े थे। सबकी सत्ता कितनी थी, अंत कोड़ा कोड़ी, क्योंकि सम्यक्त्व में से गिर कर आए ना तो अंत कोड़ा कोड़ी वाली थी। अब यह मिथ्यात्व में आया है तो मिथ्यात्व में आया तो मिथ्यात्व का बंध चालू करेगा, तो यहाँ इसमें ऐड होते चले जाएंगे तो इसका कितना भी बंद करेगा अंत कोड़ा कोड़ी से ज्यादा बंद करेगा, तो ये प्रकृति हिनाधिक होती रहेगी, मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी की भी हो सकती है अगर उत्कृष्ट बंद करेगा तो। ये दो प्रकृतियों की क्या बात है, वो तो बढ़ नहीं सकती, मिथ्यात्व में ऐसा संक्रमण नहीं होता है, मिथ्यात्व में से वो तैयार नहीं होगी, उल्टा वो तैयार हुए वो उल्टे उसका अनुभाग बढ़कर मिथ्यात्व रूप होती चली जाती है थोड़े थोड़े करके, यानी उसमें से थोड़े परमाणु मिथ्यात्व रूप में हो गए ऊपर के नीचे, फिर और थोड़े, फिर और थोड़े, फिर और थोड़े, इतना सारा मिटने के लिए असंख्यात वर्ष चले जाते हैं, जिसको कहेंगे पल्य का असंख्यात वे भाग प्रमाण वर्ष चले जाते हैं, जिसमें असंख्यात करोड़ वर्ष हो जाते हैं। तब तक ये तीन की सत्ता बनी है, जब तक ये सत्ता बनी है तो क्या वो सम्यक तो प्राप्त नहीं करता, कर सकता है इमीजिएट, कैसा वेदक सम्यक तो उपशम क्यों नहीं करता, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता के साथ ये तीनों को एक साथ उपशम आने का उसमें सामर्थ्य कैपेसिटी नहीं है, तो ये इनकी सत्ता घटते घटते घटते, क्योंकि एक इंद्रिय में तो सागर जितनी कर देगा, द्विंद्रिय में पृथक तो सागर जितनी करेगा, ऐसा जीव सम्यक पंचेंद्रिय हुआ, अभी इनको तीनों का एक साथ उपशमा सकता है। या तो पूरा मिट ही जाए तो कोई सवाल ही नहीं था, परंतु थोड़ी सत्ता रहेगी, कितनी रही है तो सागर या पृथक्व सागर इतनी रही, तो अभी उस जीव को ये तीनों का उपशम आ सकता है। अब उसको सम्यक तो होगा तो कौन सा होगा, प्रथम उपशम होगा, भले वो दूसरी बार हो तीसरी बार हो, पर दो उपशम सम्यक तो होते हैं ना, प्रथम उपशम उसके बीच में असंख्यात वर्षों का समय निकल जाता है, है परंतु उसको उपशमा नहीं सकता, एट ए टाइम उपशमा नहीं सकता, परंतु वो सक्षम समय तो प्राप्त कर सकता है, करता ही है, अंतर्मूर्त में कर सकता है, जैसे मिथ्यात्व में आते ही उसकी ये पोजीशन थी, यानी क्या नीचे मिथ्यात्व का उदय चल रहा था और ये तो ऊपर पड़ी थी, अब उसके ऐसे परिणाम हो गए कि सम्यक प्रकृति का उदय हो गया और ये दो ऊपर पड़ी है, क्योंकि एक समय के ऊपर दोनों पड़े हैं, दूसरे ही निषेक में सारे पड़े हैं, अब मिथ्यात्व का उदय चलता था, उसके बदले उसका उदय हो जावे, यानी जीव सम्यक रूप परिणमित हो जावे तो उसका उदय चालू हो जाएगा। तो कमी नहीं, इतना ही होता है, क्योंकि वो स्थिति कांडक कांत किए बिना भी समय तो प्राप्त कर सकता है या करके भी कर सकता है, यानी अंत कोड़ा कोड़ी भी हो सकता है, कोई ऐसा भी होगा 70 कोड़ा कोड़ी का बंद किया है और अंतर मुहूर्त में बिना उसको घटाए कौन, ये सादी मिथ्या दृष्टि समय तो प्राप्त कर सकता है।
क्षोभ
सम्यक तो कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है वेदक सम्यक, क्योंकि सम्यक प्रकृति का वेदन यानी उदय चल रहा है इसलिए उसका नाम वेदक। क्षोभम क्यों, क्षोभम यानी ये देशघाती प्रकृति है और ये दूसरे दो प्रकृतियां सर्वघाती है, मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व का पूरा घात करती है, उसका उदय नहीं है और वो कैसे, अभी उदय के सन्मुख हुए तो उदय तो होना रहे, होते रहे, परमाणु तो उदय में आएगी आएंगे, तो ये परमाणु इस रूप से होकर उदय में आते हैं हर समय, तो उसको क्या कहेंगे, क्षोभम सम्यक्त्व या वेदक सम्यक्त्व। कृतकृत्य वेदक वो अलग है, कृतकृत्य वेदक की बात अलग है। हाँ देखो
मैं एक बात बताऊंगा, जो कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है वो नियम से उपशम सम्यक्त्व की यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व की ही प्राप्ति करेगा।
बराबर।
और कोई भी जीव मिथ्यात्वी है अनादि से क्षोभम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा ऐसा कभी नहीं होगा। कोई जीव क्षायिक सम्यक्त्व हो जाए अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव वो भी पॉसिबल नहीं है, और जिसको प्रथमोपशम से जो क्षोभम सम्यक दृष्टि हुआ है ऐसा क्षोभम सम्यक दृष्टि ही क्षायिक सम्यक्ति होगा, प्रथमोपशम सम्यक से डायरेक्ट क्षायिक सम्यक्ति होगा ही नहीं। यानी कैसा है, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि डायरेक्ट क्षायिक नहीं होगा, उपशम सम्यक तो प्राप्त करके डायरेक्ट क्षायिक सम्यक में नहीं होगा, वो बीच में
क्षोभम होना ही है,
होना ही चाहिए,
भले अंतर्मुहूर्त तक क्यों न रहे परंतु उतना तो उसको क्षोभम हुए बिना तो आगे का क्षायिक का प्रोसेस नहीं हो सकता। ख्याल में आई ना बात, क्योंकि क्षायिक में जो कर्मों का पूर्ण नाश होना है वो कैसे होगा, वो मिथ्यात्व के सारे वो तो संक्रमण होकर अन्य दो रूप हो गए, फिर वो तो सम्यक मिथ्यात्व वो भी सम्यक प्रकृति रूप अकेली हो जाएगी, वो वहां पर भी तीन करण परिणाम होते हैं और फिर वो अंतर्मूर्त शेष रहती है, तो उसको कहेंगे कृतकृत्य वेदक, क्योंकि अंतर्मूर्त में वो एक एक निषेक खिर जाएगा और वो जीव क्षायिक समय दृष्टि होगा, तो उसको केवल वेदक नहीं कहते, कृतकृत्य वेदक
ने करने जैसे सब कुछ किया।
तो ये हमने देखा लास्ट लाइन अभी 10वें पेज पर, यहाँ कहते हैं वह तो उपशम में से क्षोभम हुआ और भगवान के पास गए, क्योंकि उपशम तो अंतर्मूर्त रहता है तो उनके समीप में अपने समीप में अंदर में विशेष एकाग्र हुए। क्या कहा, उनके समीप में अपने समीप में, यानी केवली के पाद मूल में होता है तो ये तो निमित्त रूप से उनकी निकटता होती है, आज उनके निकट में वो अपने सन्मुख हो गए, तो भगवान के समीप में वो अपने खुद के समीप हुए, यानी अंदर में विशेष एकाग्र हुए तो क्षायिक समकित हुआ और तीर्थंकर गोत्र बांधने की शुरुआत हो गई, क्योंकि उसके लिए भी वही कंडीशन है, कर्म भूमि का मनुष्य है, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में, अभी तो सम्यक दृष्टि है, श्रावक पंचम गुणस्थान की भी दशा नहीं है, ऐसा क्यों कहा, अभी कौन बताएंगे, उमा बेन आपको मालूम है, नहीं तो वो लेकर कहेंगे हमको ही पकड़ते हैं। हाँ बोला, वो श्रावक क्यों नहीं थे, यहाँ क्यों लिखा पंचम गुणस्थान की भी दशा नहीं है, उनको तो वैसे श्रावकोत्तम भी कहा है कहीं कहीं, नरकायु बांधी है जिसने, देखो कोई भी आयु क्यों ना बंधी हुई, चारों आयु में से सम्यक तो प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं, पर जिसने मनुष्यायु भी बांधी है, तिर्यंचायु भी बांधी है और नरकायु भी बांधी, वो तो मिथ्या दृष्टि बांधता है। मिथ्यात्व में ही बनती है वो तीनों ही आयु। समय दृष्टि होने पर मनुष्य को मनुष्यायु नहीं बनती, तिर्यंचायु नहीं बनती, नरकायु नहीं बनती, देवायु ही बनती। तो इन तीन आयुओं को जिसने बंध किया है, जैसे तिर्यंचायु किसी ने बांधी हो, किसी ने नरकायु बांधी हो, किसी ने मनुष्यायु बांधी हो, तो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, पर उसको पांचवा गुणस्थान भी नहीं होता। पर तो ये सम्यक्त्व लेकर अन्य भव में जाएगा कि नहीं जाएगा? श्रेणिक राजा तो गए थे, श्रेणिक राजा तो गए थे, तो सम्यक तो लेके गए ना, तो लेके जा सकता है ना। हाँ, पर उसमें क्षायिक की कंडीशन है। अगर कोई क्षायिक प्राप्त नहीं करेगा तो क्या होगा? मिथ्यात्व में जाके चला जाएगा वहां पर। अभी इस पंचम काल में कोई क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है? अभी तो नहीं कर सकता। तो क्या होगा? अभी किसी ने मान लेते हैं कि मनुष्यायु बांधी, कहाँ जाना था? महाविदेह में जाना था ना, तो कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि मनुष्य मनुष्यायु बांधेगा। अब ऐसे जीव को सम्यक दर्शन हो गया, होने में कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल हो गया सम्यक। कौन सा सम्यक तो होगा? मतलब प्रथमोपशम हो या डायरेक्ट वेदक हो, उन्हें वेदक होके रुकेगा, क्षायिक तो होगा नहीं। और क्षायिक लेके जाने वाला तो भूमि का होगा, भले वो जघन्य में जाओ या मध्यम में या उत्कृष्ट में जाओ, तो विधेय में तो जाएगा नहीं। तो विधेय में यहाँ से समय दृष्टि और विधेय में जन्म लेता है तो क्या पोजीशन होनी चाहिए? मरण के पहले मिथ्यात्व में जाना चाहिए, नहीं तो दूसरा क्या रास्ता है? वो परसों फोन आया था ना, देवलाली से फोन आया था, वो जो हाँ श्रीमद जी के कोई फॉलोअर थे, वो नहीं मानते, वो क्या क्या कहाँ से आप उनको कोई प्रूफ बताओ? उन्हें बोला निकालो धवला छठा भाग, गति आगति सुनो, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ नहीं जाता, वो सब लिखा है उसके अंदर। हमको लाइन बताओ, हमको पेज नंबर बताओ, अभी वो सबको बताए, पर वो पढ़ के भी उसका अर्थ समझ में आवे तब ना। क्योंकि मान लिया ना कि यहाँ से वो विधे, क्योंकि क्या है उनका कहना था, वो वहां से किसी डॉक्टर का फोन आया था कि हमारे यहाँ कोई श्रीमद जी के फॉलोअर है, वो तो ऐसा कहते हैं, कोई पंडित है, कि अभी वो केवल ज्ञानी के रूप में विचर रहे हैं, यानी अभी उनको केवल ज्ञानी
महाविदेह में,
महाविदेह में केवल ज्ञानी हो गए ऑलरेडी। वो करोड़ पूर्व की आयु वाले होते हैं वहां पर, और 100 साल में इनको हो गया केवल ज्ञान, ऐसा भी मानना पड़ेगा।
वास्तव में लोगों ने इतना भ्रष्ट किया है श्रीमद जी को। मेरे पास एक पुस्तक है, 6 पद नाम का कुछ पुस्तक का नाम है, उसमें तो ऐसा बोला कि साक्षात भगवान महावीर इनके हृदय में आते थे और उनसे लिखवाते थे।
ये कुछ भी बंकसबाजी चलती है, उनको लगता है हम उनकी महत्ता कर रहे हैं। अरे उनको तो आप बिगाड़, नाम बदनाम कर रहे, उनका नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है
क्या?
अरे अंतर्मूर्त में हो सकता है।
क्या कह रहे हैं भाई साहब?
महाविदेह में छोटी उम्र में मरण नहीं हो सकता क्या? केवल ज्ञान भी हो सकता है 8वें साल के बाद, और मरण भी हो सकता है अपर्याप्त, यानी जो कोई ये वहां की, यानी पर्याप्त हो गया अंतर्मूर्त में मर सकता है, और वहां पर भी लब्धि अपर्याप्त तो वहां पर भी हो सकते है। अरे कर्मभूमि है, लब्धि अपर्याप्त वहां पर भी होगी, और वो मैक्सिमम आयु है करोड़ पूर्व की। अभी हमारे यहाँ एवरेज हम कहते हैं 100 साल या 80 साल का हो, तो यहाँ कोई 5-7 साल का जीव भी मरता है कि नहीं? मनुष्य गर्भ में भी मरते हैं, अंतर्मूर्त में पर्याप्त जो अंतर्मूर्त में मर सकते हैं, अपर्याप्त की तो आयु होती छोटी है। हाँ, यानी सभी पॉसिबिलिटीज वहां पर भी है। यहाँ क्या कह रहे थे, ये तो तीर्थंकर, हाँ पंचम गुणस्थान की भी दशा नहीं है ये कहा ना, वहां से अपनी बात चली। मुनि की दशा भी नहीं है, मुनि अंतर आनंद की दशा में झूलते हैं, आहा हा। श्रेणी को कहते प्रभु तू अनाथ है भाई, अंदर भगवान चैतन्य है, वह तुझे शरण है। राजा कहते महाराज मैं राजन हूँ, मैं अनाथ, मुझे पहचाना नहीं? मुनिराज कहते राजन कहकर तुझे बुलाया, मालूम नहीं तू राजा है, पुण्य की प्रकृति दिखती है, तेरे शरीर में पुण्य के ठार दिखते हैं, शरीर का तेज, तेजस्वी शरीर, चमक वाला शरीर और तेरे गहने, तुझे पहले ही राजन नहीं कहा? परंतु राजन तुम अनाथ हो भाई, दरिद्र हो राजन। राजा कहते हैं प्रभु, ये शायद उन्होंने बताया ना उसमें श्वेतांबर में ऐसा पाठ है, मुझे आप दरिद्र किस प्रकार से कहते हो? मुनिराज कहते भाई, तुझे आत्मा की रिद्धि मिली नहीं इसलिए दरिद्र हो, तुम दरिद्र हो। उपदेश दिया तो सम्य दर्शन प्रकट हुआ, दरिद्रपना मिट गया और लक्ष्मीवंत हो गया। भगवान आत्मा की ज्ञान दर्शन अनंत आनंद की लक्ष्मी प्राप्त की, वह लक्ष्मीवान हो गया। ये लक्ष्मीवान है, आहा हा। हम पढ़ते थे तब आता था, 78 साल पहले की बात है। प्रभुता प्रभुतारी तो खरी, मुजरो मुझ रोग ले हरी। प्रभु इस अज्ञान रूप को हर ले तो मैं तुझे प्रभु मानू, है ना। प्रभुता प्रभु तारी तो खरी, तभी तो तेरी प्रभुता सच्ची हो जाएगी। मेरा रोग हर ले तो। वे दलपतराम कवि तो ईश्वर को कहते हैं, पढ़ने में आता था प्रभुता, उसमें प्रभुत्व गुण है ना। प्रभुता प्रभु तारी तो खरी, मुजरो मुझे रोग ले हरी। मेरे मुजरे से प्रभु मेरा रोग हर ले, मैं तेरा मुजरा कर रहा हूँ, है ना, मैं तुझे वंदन कर रहा हूँ। यहाँ उपयोग जहाँ द्रव्य में जाता है तो वहां उसने मुजरा किया, क्या कहा, यानी उसने नमस्कार किया, ये नमस्कार है। ये जिन बिंब दर्शन है, वो शास्त्र में आता है ना कि जिन बिंब दर्शन से तो ऐसा निदत्य और निकाचित का चूरा भूखा हो जाता है, ऐसा ऐसा तो लोग कहते हैं भगवान के दर्शन करने से, वो बाह्य भगवान के दर्शन से नहीं, ये वाली बात है। धवला में ऐसी बात है कि जो नमस्कार है ना, वो सम्य दृष्टि का ही नमस्कार, वो नमस्कार भी असंख्यात प्रकार का होता है। यानी क्या है नमस्कार असंख्यात प्रकार का, उसका अर्थ क्या है, कितना झुकना, कितना एंगल में झुक, उसकी बात नहीं है, अपने अंदर में लीन हो जाना,
शुद्धोपयोग
के चौथे गुणस्थान में भी असंख्यात प्रकार है, अकेले चौथे वाले के, आके पांचवे के और छठे सातवें के तो अलग बात है। यानी उसमें जो विभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा इतने भेद होते हैं ना उसमें, उसकी बात है। यहाँ भी यही उपयोग जहाँ द्रव्य में जाता है तो वहाँ उसने मुजरा किया, यानी तब उसने नमस्कार किया, किसको, भगवान को नमस्कार तब हुआ, क्योंकि अभी तो उसने भगवान को पहचाना है। बाकी तो नमस्कार कैसा करता था, शरीर से, वचन से, मन से कहो, भक्ति भाव श्रद्धा था, ये श्रद्धा क्या है, मन में ही तो भक्ति भाव लाया ना उसने, ये सारे पुद्गल को ऑर्डर कर दिया, भगवान को नमस्कार कर दिए। उसका अज्ञान का रोग नाश हो गया, यह शरीर का रोग आत्मा में नहीं है। तो आत्मा में कौन सा रोग है, अज्ञान रूपी रोग, मिथ्या भ्रांति रूपी रोग, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, वो आता है ना श्रीमद जी, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। सदगुरु यानी भगवान जो है, सर्वज्ञ भगवान जो है, वो सुजान यानी वो जो अच्छे वैद्य है, वो रोग का इलाज करने वाले हैं। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान, क्या कहा, वो वैद्य ने तो बताया और फिर गुरु की आज्ञा, आज्ञा का अर्थ होता है उपदेश, आज्ञा नहीं जाओ अभी तुम ऐसा काम करो वैसा काम करो अभी ध्यान करो, वो आज्ञा नहीं होती है, आज्ञा का अर्थ ऑर्डर नहीं होता। गुरु की आज्ञा ने गुरु का उपदेश, किस संबंधी, मोक्ष मार्ग संबंधी जो उपदेश है वही उनकी आज्ञा है। तो गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, क्योंकि जो वैद्य होते थे वो पथ्य भी बताते हैं ना, परहेज जिसको कहेंगे गुजराती में, क्या कहते हैं, परहेज नहीं, हिंदी में परहेज कहते हैं, परहेज। औषध विचार ध्यान, और औषध क्या है, औषधि कौन सी है, आत्म भ्रांति को दूर करने की औषधि क्या है, विचार और ध्यान, विचार यानी वो तत्व निर्णय और आत्मसन्मुखता। भ्रांति का बड़ा रोग है कि मैं राग वाला हूँ पर्याय वाला हूँ, ये भ्रांति है और वो बड़ा रोग है, वो रोग लगता ही नहीं है। पर वाला हूँ, पर वाला हूँ संयोग वाला हूँ, क्योंकि मैं लक्ष्मी वाला, मैं धन वाला, मैं घर वाला, मैं बाल बच्चे वाला, ये सब क्या है, पर वाला हूँ, गुरुदेव की भाषा में कितना वाड़ा बढ़ गया छे। वाड़ा समझते? वो नारू नाम का एक रोग होता है। नारू नारू ऐकले क्या? हाँ, वो पैर में से वो निकलता है ना, हाँ, पानी के कांटेक्ट में आते तो निकलता रहता है लंबा लंबा, उसको कहते वाड़ा। तो कहते ये वाड़ा है ना, राग वाड़ा, पर्याय वाड़ा, स्त्री वाड़ा, पुत्र वाड़ा। गुरुदेव कहते थे कितना वाड़ा वड़ गया छे कर। त्रिकाणी आनंद का नाथ हूँ ऐसा जिसे मालूम नहीं, वे भ्रांति में, भ्रांति के रोग में पड़े हैं। अपने आ गया है, भ्रांति का नाश होता है। आत्मा के पद की प्राप्ति होने पर भ्रांति का नाश होता है, आत्मलाभ होता है। पहले भी आई थी ना, मिथ्यात्व की शोभा को लूट लेता है, वो बात आई थी। यहाँ तो बापू अंदर की बातें है। आहा हा, अब यही रुकेंगे हम, 12 पेज पर आए हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो। वीरेश भाई।